نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کے خوبصورت اصول اور طریقے دیے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اس بات پہ کہ اس نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا تو شاید اتنا ہی کم ہوگا کیونکہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اسلام کی قیمت دے کے اسلام قبول کیا ایک وہ دور تھا کہ جب مسلمان ہونے کی قیمت کوڑوں کی صورت میں چکانی پڑتی تھی پتھروں پہ لٹایا جاتا تھا لیکن آج الحمدللہ ہم ان آزمائشوں میں تو نہیں پڑے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ایمان والا دنیا میں ایک آزمائش کی حالت میں ہوتا ہے آپ لوگ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا یہ سوال ایک سوچ ذہن میں آنا بھی چاہیے اگر نہیں کبھی آیا کیونکہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بھی کام بغیر کسی مقصد کے کریں حتیٰ کہ اگر ہم ایک دفعہ دن میں فریج کھولتے ہیں تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی یہ تو نہیں کہتا بلا مقصد ہی میں نے فریج کھولا ہم ریسٹ روم میں جاتے ہیں تو اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے گاڑی میں جتنی دفعہ بیٹھتے ہیں کسی مقصد سے ہی بیٹھتے ہیں تو یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس میں مقصد ہے اگر تو اتنی بڑی دنیا بنانے کا اور ہم سب کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی یقیناً بڑا ہونا چاہیے تو کبھی آپ سوچیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کیا مقصد ہے ہمارے پیدا کرنے کا اس کو میں اور مختصر کر دیتی ہوں کہ چلیں مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک تو ہے جنرل مقصد نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا اب وہ عبادت کیا ہوتی ہے اس کو اس وقت ہم نہیں چڑھیں گے کیونکہ ہمارے ہاں تو عموماً عبادت نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا اور ریچولز کی ادائیگی کا نام ہے حالانکہ عبادت میں صرف یہ چیز نہیں آتی اس کے اندر انسان کی پوری زندگی آتی ہے بندگی اطاعت سبمیشن مکمل انسان اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ کو بھی مانے اور اس کی بات کو بھی مانے تو ایسے وقت میں تو عبادت کی بات نہیں ہم کریں گے لیکن میرا اس وقت سوال کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت بڑا مقصد دے کے بھیجا وہ مقصد کیا ہے میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دیتی ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی آپ سے راستے میں پوچھ لے تو آپ پورے یقین سے بات کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے اس دنیا کا مالک حقیقی اپنے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ ہے کنگ ہے حالانکہ کنگ کا لفظ اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اس نے تو خود اپنے آپ کے لیے کہہ دیا بلِ اللہ ما فی السماواتی و ما فی الارض آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ہے اب جو بادشاہ ہوتا ہے یا کنگ ہوتا ہے یا رولر ہوتا ہے ہماری زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں لیکن ہماری زبان میں جب کوئی بھی کسی ملک کا حاکم ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا خیال ہوتا ہے یا اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس ملک میں اس کا قانون لاگو ہو ایسے ہی ہے نا हम मिसाल लेते हैं किसी मुल्क की, कोई छोटा मुल्क हो या बड़ा हो, कोई बिल्कुल नया बना है अगर, तो उस मुल्क का एक कानून होगा ना, और एक रूलर होगा। अब रूलर क्या करता है कि इस मुल्क में मेरे लॉज चलें, जो मैं रूल्स बनाऊं, जो लॉज बनाऊं उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ठीक है। फिर उसके लिए क्या होता है कि वो एक कैबिनेट बनाता है, अपनी काबीना होती है, कुछ प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कुछ डिफरेंट चीफ्स हैं। आपको सेटअप मेरे से अच्छा पता होगा, माशाल्लाह खबरें सुनने वाले लोग तो हर चीज़ को जानते हैं कि इधर उधर क्या होता है। तो बात का खुलासा क्या है कि एक बादशाह जिस तरह अपने कानून को राइज कराने के लिए किसी न किसी को नॉमिनेट कर देता है, वो प्राइम मिनिस्टर की सूरत में हो या प्रेसिडेंट की सूरत में, और फिर वो दुनिया में यानी उसके मुल्क के अंदर उसका कानून चलता है। अब हम कहते हैं कि अल्लाह सुबहाना तआला ने इस दुनिया को बनाया, ठीक है। अब वो चाहता है कि इस दुनिया में उसका कानून चले, ये भी ठीक है, होना चाहिए ना। अल्लाह ताला को हक है ना इस बात का कि उसका कानून चले, कि अल्लाह ताला को हक है कि उसका कानून चले। उसके कानून की बेसिक शिक क्या है, फर्स्ट यानी जस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ इस्लामिक लॉज इज क्या, कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, यानी तुम अल्लाह को एक कहो तुम फला पा जाओगे, यानी देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह सुबहाना ताला। अब इस कानून को उसने दुनिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट प्रॉफिट्स को भेजा। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम, जिनको हम एक प्रॉफिट के तौर पे जानते हैं, लेकिन हकीकत में वो पहले इंसान भी थे, प्रॉफिट भी थे, यानी नबी थे, लेकिन रसूल नहीं थे। रसूल कौन होता है कि जो एक नई शरीयत लेके आता है। असल में ये सिलसिला शुरू हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से, और होते होते डिफरेंट प्रॉफिट से गुज़रते हुए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रुकता है आके। हर दौर के नबी ने अपने लोगों को एक ही मैसेज दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को मानो और उसकी बात को मानो। सिर्फ अल्लाह को मानने से बात नहीं बनती, उसकी बात को मानने से बात बनेगी ना। जैसे आप किसी को कहते हैं कि यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस, दिन में 100 बार तस्बीह पे कोई पढ़े, तुम मेरे बॉस हो, तुम मेरे बॉस हो, तुम मेरे बॉस हो, पे मिल जाएगी। वो कहेगा अच्छा ये करो, यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस। वो कहेगा अच्छा ये लिख दो, ये कर दो, नो यू आर माई बॉस, मैं वजीफा कर रही हूँ इस वक्त, यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस, सो मैं तुम्हारी बात सुनने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं तो तुम्हारे नाम के तस्बीह पढ़ रही हूँ। बात नहीं बनेगी ना। तो लिहाजा अल्लाह को मानना और उसकी बात को मानना, जो और अल्लाह ताला कहे उसको भी मानना। हर दौर में लोगों का एक ही मसला रहा, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। मैंने सही कहा, के और की को का फ़र्क है, बस थोड़े से प्रपोजिशंस ठीक कर लें तो बात बन जाती है। अल्लाह को मानना और अल्लाह की ना मानना, ये कैसी बात है, उसके मुकाम से हटी हुई बात है। अब हर दौर में नबियों ने आके ये बात हम तक पहुंचाई कि देखो अल्लाह को भी मानो अल्लाह की भी मानो। हर दौर में जिसने उस बात को मान लिया उसको कहते हैं मुस्लिम। हर दौर के नबी के मानने वाले लोग मुसलमान थे, यानी आज हम शायद इस चीज़ को ना समझें। बाज़ लोग सोचते हैं कि इस्लाम इज़ वेरी न्यू रिलीजन, राइट, बहुत नया मज़हब है। पुराने मज़हब तो ज्यूइज़्म और क्रिश्चियनिटी थी, लेकिन ज्यूज़ अपने वक्त के मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस अपने वक्त के मुस्लिम्स थे। अब होता क्या गया, होता क्या रहा कि जब एक प्रॉफिट गया तो उसकी जगह दूसरे प्रॉफिट ने ले ली, और सेम लॉ जो था वो चलता रहा, रिपीटिशन थी हर चीज़ की। अब हुआ क्या कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात आ गई। अब जब आप पे बात आई तो आपको और मुझे भी मालूम है और हमारा ईमान है ये कि अल्लाह के नबी सल्लम आखिरी नबी थे, कोई नबी नहीं उनके बाद, खातिम और रसूल थे, आप सील्ड थे, यानी आप एक सील्ड नेक्टर हैं कि जिसके बाद अब कोई और नबी नहीं आएगा। अब यहाँ है असल में मेरी और आपकी बात कि पहले दौर में एक नबी के बाद दूसरे नबी ने इस जिम्मेदारी को ले लिया कि हम लोगों को अल्लाह ताला के बात भी बचाएंगे और उसकी ज़ात भी बचाएंगे। अब क्वेश्चन होता है कि प्रॉफिट सल्लम की डेथ के बाद, जब आप अपना मिशन पूरा हो गया, आप चले गए, उसके बाद से लेके क्यामत तक के जो लोग आएंगे उनको कौन ये मैसेज कन्वे करेगा, क्योंकि हमेशा एक लाइव पर्सन की ज़रूरत होती है ना, एक टीचर ज़रूरी होता है। उसके लिए फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी ऑनर अपनी उम्मत के लिए रखी, और वो क्या फरमाया कि तुम नबियों के वारिस हो। वो पैगाम जो पहले दौर में प्रॉफिट्स के ज़रिए कन्वे हुआ ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को, अब उम्मत मुस्लिमा इस काम को करेगी। दूसरे पारे की बिल्कुल पहली आयत, किबले की तब्दीली का जहाँ हुक्म है, और उसके बाद फिर यही बात है कि कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, इसी तरह हमने तुमको मॉडरेट नेशन बनाया, उम्मत वसत बनाया, दरमियानी मुद्दत बनाया, यानी तुम एक वसीला हो अल्लाह के और लोगों के बीच में, समझ रहे हैं ना, ज्वाइन करने वाली चीज़ अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात और दुनिया में आने वाले लोग, उनको तुम अल्लाह ताला की तरफ लाओगे। तो एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी हुई, हम मुसलमान इस दुनिया में क्यों आए कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ें, रब से रब के बंदों को जोड़ें, और इसी का नाम है दावा, तबलीग, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, नेकियों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। और कल कयामत के दिन विटनेस होंगे प्रॉफिट हमारे, और हम विटनेस होंगे दूसरी नेशंस पे। चलें, अब बात तो हमने बहुत लंबी की, खुलासा क्या निकला कि हमारा काम दुनिया में इस वक्त क्या है कि हम अल्लाह की बात को उसके बंदों तक पहुंचाएं। मान गए, ये समझ आ गई जिम्मेदारी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि फिर क्या बात बताएं, अल्लाह की क्या बात बताएं। हम तो हैं बताने वाले, हमने कन्वे करना है। आप किसी को बुलाते हैं और आप कहते हैं लिसन, ये एक मैसेज है, ये फ़लां को दे दो। फ़लां को मैसेज दोगी, वो कहती हैं हाँ दूंगी। फिर अगला सवाल क्या होता है कि अच्छा देना क्या है। फिर आप रिटर्न पेपर देते हैं या बोल के देते हैं या वट सो एवर कि ये बात वहाँ कन्वे कर दो। जैसे सारा दिन आपके ये UPS, FedEx यही कुछ तो कर रहे होते हैं ना, उसका पैगाम उसको दे रहे हैं, उसके लेटर्स उसको दे रहे हैं, उसके पैकेजेस उसको दे रहे हैं, अब ये कन्वे करते हैं ना। अब आप देखिए कि कोई कन्वे करना चाहता है और उसको पता ही नहीं कि करूं क्या। मसलन फेडेक्स किसी पैकेज को डिलीवर करना चाहता है, उसके पास पैकेज ही नहीं है। आप सारा दिन उसको फ़ोन करते रहें कि मेरा पैकेज दे दो दे दो, वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं तुम्हारा पैकेज कौन सा है। डेफिनेट है ना कि उस पर एक सही घर का एड्रेस लिखा हो, बाहर जो घर के पर्सन है उसका एड्रेस लिखा हो, और हर चीज़ लिखी होती है ना, इसके बगैर तो काम नहीं चलता। और जो पैकेज लॉस्ट होते हैं उसमें इसी की वजह होती है कि एड्रेस सही नहीं होते। तो अब हमने पैगाम देना है बंदों को। आप एक लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए अगर सोच लें अपने आप को कि हम एक शिपिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, या हम एक जैसे डिलीवरी देने में काम कर रहे हैं, तो अब हम अल्लाह ताला से पूछेंगे ना कि अल्लाह ताला मैसेज देना क्या है लोगों को। आप देखिए कि अल्लाह ताला का पैगाम कहाँ है, इस किताब में, कुरान में कहाँ लिखा है, कहाँ अल्लाह ताला ने अपना पैगाम लोगों को दिया है कि पूरों सारी दुनिया को कहा, और आज हम अपने कुरान में पढ़ते हैं या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलकुम जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीन मिन कब्लिकुम और तुमसे पहलों को पैदा किया, क्यों करें इबादत, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम बच जाओ। किस चीज़ से बच जाओ, दुनिया में मुश्किलों से बच जाओ और आखरत में दोजख का इंजन बनने से बच जाओ। ठीक है, अब ये कुरान पाक दिया अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें एक कोर्स के तौर पे, ये है हमारा मटेरियल जिसको हमने कन्वे करना है। चलिए अब आगे चलते हैं कि ये कुरान पाक हमारे तक कैसे पहुंचा, क्या हमें खुद मिला, क्या हमारे घरों में आया, कोई फरिश्ता देके गया। ये कुरान पाक कहाँ मिला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें मिला, सबको मालूम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग, यानी अल्लाह की बात हमारे तक पहुंचने में जो सोर्स बनी ज़ात वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब आते हैं हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने मामले को कि हमें उनके साथ क्या करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था, हम उस मिशन को आगे लेके कैसे बढ़ें, क्या हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते रहें। यानी आप तसव्वुर में लाइए कि आपके ज़रिए से ये पैगाम कुरान का हमें मिला कि लोगों तक पहुँचाओ। पहली बात यह है कि हमें इसका यकीन होना चाहिए ना, हमारा ईमान हो इस बात पे कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये है वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। किस चीज़ में शक नहीं, इसमें शक नहीं कि क़यामत तक के लोगों की कामयाबी की दलील है कि ये वो इस किताब को माने। आज के दौर में भी ये किताब उतनी ही अहम है जितनी आज से 1400 साल पहले थी। समटाइम लोग क्या कहते हैं कि आज के दौर में अब कुरान पढ़ेंगे, 1400 साल पुरानी किताब पढ़ना है तो कोई अप टू डेट किताब पढ़ो, कोई कंप्यूटर का वर्जन पढ़ो, कुछ और पढ़ो, इस किताब से तुम्हें क्या मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, ये वही किताब है जिसने उस दौर की जहालत को दूर किया था, आज भी आज के दौर की जहालत को दूर करने के लिए यही किताब है। चले अब आप ये बताइए कि क्या हम इस किताब को फिर समझते हैं? किसी को कन्वे करने के लिए आप कैसे बात करते हैं? आपको खुद पता होना चाहिए ना। आप किसी को कुछ कहें, कोई घर से बाहर जा रहा था और आप एकदम उसको कहें कि दूध ले आना, मिसाल है मियाँ आपके जा रहे थे और आपने निकलते निकलते उन्हें कहा दूध चीनी दो तीन चीज़ें ले आओ, वो सुनेंगे याद रखेंगे जहन में तो ही शाम को लाएंगे। मिसाल है कि आपने जिस वक्त कहा उन्होंने अपने कानों पर हेडफोन लगाया हुआ था, वो कुछ और सुन रहे थे या फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे। एक बड़ी जनरल सी बात है और अक्सर बातें फ़ोन पे होती ही हैं। अब वो फ़ोन पे अपने दोस्त से बात कर रहे थे बड़ी ज़रूरी, बीच में आपने मैसेज दे दिया कि दूध ले आइएगा, आप तो मुतमईन हो गए ना कि उन्होंने आपकी बात सुन ली, राइट? अब रात को क्या वो दूध ले आएंगे? वो नहीं लाएंगे और आप मुंतज़िर थे। वैसे मुझे पता है आप में से कोई इंतज़ार नहीं करेगा, आप खुद ही ले आएगा जाके, माशाल्लाह आज के दौर में तो ये भी बड़ी सहूलत है ना। लेकिन जस्ट मिसाल दे रही, कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते थे। अच्छा जी, अब आप बताइए कि वो शाम को आए और आपसे कहें, आप पूछें भाई किधर है दूध, तो कहेंगे कौन सा दूध, कहाँ भाई, मैंने आपको सुबह कहा था, मैंने तो नहीं सुना, मुझे तो समझ ही नहीं आई। नहीं बात बनती ना। यानी जिसने मैसेज कन्वे करना है उसको उसके लफ्ज़ तो समझ आए, उसकी ज़ुबान तो समझ आए। लैंग्वेज बैरियर देख लें, मिसाल है कि आपकी मेट है और उसको इंग्लिश नहीं समझ आती, स्पेनिश है वो, क्या आप उसको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उसके मुताबिक काम कर सकती है? नहीं कर सकती ना। जिसको जो लैंग्वेज आती ही नहीं, आप सारा दिन उसके सामने बोलते रहें बोलते रहें, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होगा? वो मुतमईन होगा क्योंकि उसको ख्याल है कि मैंने काम कर दिया, जो उसको समझ आया उसने कर दिया। तो असल बात फिर क्या हुई कि अगर हमने अल्लाह सुभान तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की कोई दलील देनी है तो फिर हमारी ज़िंदगी में उस पैगाम की अहमियत होनी चाहिए, हम उस बात को समझें। चलें, हर एक कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पाक पढ़ते हैं, कितना समझते हैं, यानी कुरान पाक में 30 पारे हैं ना, 114 114 सूरतें हैं, ठीक है, 6666, 6666 आयतें हैं, मिसाल है। हम सब अपने आप को पूछें, कोई मुझे ना पूछे ना मैं आपको पूछती हूँ कि हम इन आयतों में से कितनी आयतों को अपनी ज़ुबान में समझते हैं। ये पैगाम है, यानी 6666 मैसेजेस हैं अल्लाह ताला ने हमें दिए, क्योंकि ये तुमने अपने नेबर्स में कन्वे करने हैं, ये तुमने अपने करने हैं, ये तुमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताना है कि अल्लाह ताला ये चाहता है, और हमें वो सुबह समझ ही नहीं आता कैसे कन्वे करेंगे, कोई वे आउट है इसका? पहले हम समझेंगे तभी तो दूसरों को बताएंगे ना। तो क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नहीं पूछेंगे? जब आपका हज्जतुल विदा का मौका था, यानी आपने सारी ज़िंदगी में एक ही हज किया, मक्का और मदीना के करीब थे, यानी या मक्का में रहे या मदीना में, लेकिन सारी ज़िंदगी में एक हज किया, ठीक है। अब आप देखिए कि जब आपका वो आखिरी हज था जिसको हज्जतुल विदा के मौके पे हम के नाम से हम याद रखते हैं, हज्जतुल विदा के नाम से, तो आपने जब खुतबा दिया और सब रिचुअल्स पूरे हुए तो आपने सब लोगों को जमा किया, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग उस वक़्त आपके सामने थे, और आपने लोगों से दो बातें पूछी थी। एक क्या कही थी, हल बल्लगता, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया, यानी अल्लाह ताला ने जो मेरे ज़िम्मे काम लगाया था कि ये कुरान और हदीस और अपनी जो बातें हैं जो मैसेजेस हैं वो तुम्हें दे दूं, क्या तुम इस चीज़ की गवाही देते हो कि मैंने अपना काम कर दिया? क्योंकि प्रॉफिट्स को पता है कि क़यामत के दिन हमसे पूछोगी, और इस चीज़ का एहसास नबी सल्लम को रुला दिया करता था। बाज़ दफ़ा आप रात को रोते रहते थे सिर्फ इन्हीं आयतों को पढ़ पढ़ के कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला नबियों से पूछेगा कि बताओ तुमने मैसेज कन्वे कर दिया था कि नहीं, इतना एहसास था, इतना बोझ था आपके ऊपर। तो अब आप लोगों से सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं कि बताओ क्या मैंने मैसेज कन्वे कर दिया? ये बिल्कुल ऐसी ही, मैं मिसाल सिर्फ एक समझने के लिए दूंगी, वरना कोई तकाबुल और नाउज़ुबिल्लाह ऐसी बात नहीं। बस अगर मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ ना, तो जैसे मैं 1 घंटा आपका लूंगी, और बड़ा कीमती है आपका घंटा है, आप कहाँ कहाँ से आए, आप बैठे हैं सुन रहे हैं, अपना बहुत कुछ छोड़ के बैठे हैं ना, तो क्या एंड ऑफ द दर्स मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ख्याल है मैंने आपके इस घंटे को वर्थ कर दिया, मैसेज पहुंच गया, तो मुझे हक है ना मुझे पूछना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया या आप जो सोच रहे थे वो बात नहीं की, हो होता है ना, तो नबी सल्लम ने लोगों से पूछा था कि क्या मैंने मैसेज कन्वे कर दिया, तो आप लोगों ने सबने पुकार के कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम आपने पैगाम दे दिया। और बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं जो इस वक्त हम अहादीस कोट नहीं कर रहे, वरना मैं आपको उन्हीं लफ्ज़ों में सुनाऊं कि जिस तरीके से उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया कि जी अल्लाह के नबी सल्लम आपने पूरा पैगाम दे दिया और आपने अमानत का हक अदा कर दिया। उसके बाद नबी सल्लम ने आसमान की तरफ देखा और अपनी शहादत की उंगली पुकार के कहा कि अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा अशहिद, अल्लाहुम्मा अशहिद कि अल्लाह तू गवाह रहना। किस बात पे? कि जो काम तूने मुझे दिया था मैंने कर दिया।